कृष्णमु अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् तेषु पञ्च नमो यारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेषिं पठमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मंगलम। पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, तीर्थंकर भगवंतों ने श्रावक के तीन भेद बतलाए हैं, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक। उसमें सबसे पहले श्रावक की परिभाषा तो समझ में आ चुका है, श्रावक किसे कहते हैं, क्या कहेंगे, जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान होता है उन्हें श्रावक कहते हैं। गृहस्थ का अर्थ भी समझ में आया है, गृहस्थ किसे कहते हैं, क्या कहेंगे, जो घर में रहते हैं उनको गृहस्थ कहते हैं। गृहस्थ के कोई भेद नहीं होते, श्रावक के भेद होते हैं, पाक्षिक श्रावक, निष्ठिक श्रावक, साधक श्रावक। पाक्षिक का अर्थ होता है जो धर्म का पक्ष लेता है, धर्म यानी अहिंसा, अहिंसा को धर्म कहते हैं। जो अहिंसा का पक्ष करता है वह धर्म का पक्ष करता है, और जो धर्म का पक्ष करता है वह अहिंसा का पक्ष करता है। धर्म और अहिंसा में कोई भी अंतर नहीं है, अहिंसा ही धर्म है और धर्म ही अहिंसा है। उस अहिंसा के पक्ष में आने वाला, जैसे आप लोग पक्ष में आते हैं ना, जनता को छोड़कर कांग्रेस में, कांग्रेस को छोड़कर जनता में, वोट देते समय पक्ष होता है, जो अच्छा काम करे उसके लिए वोट देते और करते सभी बुरा ही, बात अलग है। पक्ष क्या है, पक्ष अहिंसा का पक्ष। सच्चा जैन श्रावक सबसे पहले धर्म का पक्ष ग्रहण करता है। धर्म के पक्ष को स्वीकार करके अपने जीवन को धन्य बना लेता है। सबसे पहले तो वह अहिंसक बनता है। कैसा अहिंसक? एक मुनि की तरह अहिंसक तो नहीं बन सकेगा, वह सबसे पहले एक सामान्य अहिंसक बनता है, सामान्य तौर पर अहिंसक बनता है। उसके जीवन में जो हिंसा होती है वह हिंसा बड़ी हिंसा और छोटी हिंसा, दो प्रकार की हिंसा होती है। आप अपने जीवन में देखते होंगे हिंसा बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है। जो छोटी हिंसा होती है उसको व्यक्ति एकदम छोड़ नहीं सकता। जीवन के दो प्रकार की इन हिंसाओं में से व्यक्ति उस हिंसा को पहले छोड़ पाता है जो मोटी हिंसा है, बड़ी हिंसा है। बड़ी हिंसा को पहले छोड़ें और छोटी हिंसा को क्रमशः बाद में करते जाएं, इस प्रकार का एक छोड़ने का क्रम होता है। एक साथ सभी नहीं छूटते, छोड़ने वाला छोड़ सकता है, पर व्यक्ति जो क्रमशः अहिंसा की साधना करना चाहता है वह अहिंसा की साधना एक साथ नहीं कर पाता। इसलिए जो धीरे धीरे कर पाता है उसको कहा है कि बड़ी हिंसा को पहले छोड़ें फिर बाद में छोटी हिंसा को छोड़ें। क्रम है, पद्धति है, इस पद्धति के अनुसार व्यक्ति चलता है तो धर्म को अपने जीवन में कठिनाई महसूस नहीं करता। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जैन धर्म बहुत बड़ा कठिन है, जटिल है, कठिन है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जैन धर्म जैसा सरल धर्म तो दुनिया में कोई नहीं है, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। आप मंदिर नहीं आते हैं तो यहाँ कौन पूछने वाला है ना। लेकिन अन्य धर्मों में देखो, आप मस्जिद नहीं जाते हैं किसी दिन तो पूछने वाले समाज वाले ऊपर रहते हैं और बहुत जबरदस्त पूछते हैं आप क्यों नहीं आए। उनमें एक सामाजिक स्तर पर जो संगठना है, समाज के प्रति जो समर्पण है, धर्म के प्रति जो समर्पण है, वह जैनियों में पाया नहीं जाता। उसका कारण है कि सबसे ज्यादा दुनिया में प्रमादी कोई है सभी धर्मों में, सबसे ज्यादा कोई प्रमादी है तो जैनी है। उसका कारण है जैनी प्रमादी इसलिए है कि वह अपने जीवन को भी नहीं जानता, अपने देश को नहीं जानता, अपने परिवार को नहीं जानता, अपने जीवन में कार्य अकार्य, कर्तव्य अकर्तव्य यह नहीं जानता। वैसे तो सभी जानते हैं लेकिन यह नहीं जानता, इतना प्रमादी है। और जग जाए तो इतना ऐसा जग जाएगा कि सबको पीछे निकाल देगा। दोनों बातें करने लग जाए तो ऐसा वह धर्म करने लग जाएगा जो दुनिया में करता ही नहीं, जग जाए तो ऐसा जग जाए कि वो दिगंबर मुनि बन जाए, सारी हिंसा को छोड़ करके रंच मात्र भी हिंसा, न स्थूल न सूक्ष्म, दोनों प्रकार की हिंसा को छोड़ करके वह एक आदर्श उच्चतम मानव बन सकता। दुनिया में सबसे ज्यादा उच्चतम और ज्यादा आदर्श मानव हम किसे कहें? एक दिगंबर साधु ही है, उनकी जैसी दया, उनकी जैसी करुणा क्या आप अन्यत्र देख सकते हैं? दया करुणा यह मानव का धर्म है, मानवीय धर्म है। हिंसा पाश्विक वृत्ति है, दानवता है। हिंसा अधर्म है, पाप है। अहिंसा आदर्श है, पृथ्वी पर का सबसे ऊंचा धर्म है अहिंसा। इस अहिंसा धर्म को पालने वाले वस्तुतः कहा जाए तो जैनों में जितना अहिंसा का सूक्ष्म पालन किया जाता है उतना कहीं भी नहीं किया जाता। करने लग जाए तो तब की बात है। यदि जैन अहिंसा का पालन करने लग जाए तो उसके अहिंसा तत्व की बारीक से बारीक बातें पता रहती हैं, बारीक से बारीक। और पालन न करे, आनाकानी कर दें, तो जैन सबसे बड़ा हिंसक भी होता है। तीर्थंकर भगवंतों ने जो अहिंसा धर्म का उपदेश दिया है वह अहिंसा धर्म उनके जीवन की अनुभूति थी। अहिंसा को उन्होंने जिस तरह से, जिस क्रम से जीवन में पाया, देखा, अनुभव किया, उन सिद्धांतों को, उन तत्वों को मानव किस प्रकार से जीवन में ला सकता है और सुख शांति का अनुभव कर सकता है, यह विषय उन्होंने बहुत डीप बताया है। जैन शास्त्र जितने भी हैं अहिंसा की सूक्ष्मतम बातें करते हैं। इतना सूक्ष्म व्याख्यान, इतना सूक्ष्म कथन, इतना सूक्ष्म प्रतिपादन किसी अन्य धर्म में ही नहीं। ये जरूर है, ये कहा जाता है कि दूसरे प्राणी को मत मारो, ये भी कहा जाता है कि गुस्सा मत करो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लोभ करना पाप है, गुस्सा करना पाप है, पर जीवों को मारना पाप है, किस धर्म में नहीं कहा है, सब धर्मों में कहा है। लेकिन ये दो बातें विशेष डीप साधना की अपेक्षा से इसकी गहराई में हम किस प्रकार से जा सकते हैं, इसका व्याख्यान जैसे तीर्थंकरों ने किया है वैसा अन्यत्र कहीं भी दुनिया के किसी भी धर्म के ग्रंथों में ये अहिंसा तत्व है ही नहीं। उसका कारण है, वहां क्यों नहीं है और यहां क्यों है, उसका कारण है कि अहिंसा की साधना करने वाला ही अहिंसा सिद्धांत की अनुभूति कर सकता है। और अहिंसा की साधना के लिए सबसे पहले व्यक्ति को परिग्रह से मुक्त होना पड़ता है, बहिरंग परिग्रह, चेतन और अचेतन, और अंतरंग परिग्रह, रागादि भाव, वैभाविक भाव, प्रदूषित भाव, प्रदूषित आत्मा के परिणाम, ये आभ्यंतरी हिंसा है। इन दोनों का कथन तीर्थंकरों ने बहुत बारीकी से किया है। जैन धर्म में एक शास्त्र है जिसको कहते हैं समय सार, सुना है कभी, पढ़ा तो नहीं होगा, शास्त्र का नाम सुना तो है। समय सार ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है, उस प्रकार का ग्रंथ दुनिया में आज तक किसी ने नहीं लिखा, अकेला ग्रंथ है वो। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में समय सार जैसा ग्रंथ कोई ग्रंथ नहीं है। और उस समय सार में आत्म तत्व का प्रतिपादन है। संसार में बार बार जन्म मरण करने वाला जो यह आत्मा है, ये आत्मा बार बार जन्म मरण क्यों करता है, इस आत्मा को संसार क्यों है, यह आत्मा संसार से किस प्रकार से मुक्त हो सकता है, उसका क्या विधि विधान है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये भव क्या है, पर भव क्या है, पूर्व में क्या था, अभी क्या है, भविष्य में क्या क्या हो सकता है और क्या करने से क्या बन सकता, यह विषय समय सार ग्रंथ के भीतर तत्व को पकड़ करके इतनी गहराई से समझाई गई है, उसको पढ़ते ही व्यक्ति आत्मा से इतना साफ सुथरा स्वच्छ निर्मल बन सकता है, विशुद्ध बन सकता है कि उसको पढ़ते ही परिणामों की शुद्धिकरण हो जाता है। लेकिन वह समय सार ग्रंथ गृहस्थ को पढ़ने के लायक ही नहीं, इसका मतलब नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूं, समय सार पढ़ना तो बहुत अच्छा है लेकिन पढ़ने के लायक नहीं, क्योंकि उसमें जो प्रतिपादन किया गया तत्व है वो बहुत ऊंची है, गृहस्थ के लेवल का नहीं है। वो आत्म तत्व साधना की बात उसमें है, आत्मानुभूति की बात है, और परिशुद्ध अपने ही शरीर के भीतर रहने वाली जो आत्मा है उसको परिशुद्ध रूप में अनुभव किस प्रकार से करना चाहिए, यह बात बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। किंतु अपने ही भीतर शरीर के भीतर रहने वाली इस आत्मा की अनुभूति के लिए उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, व्यक्ति आचरण में क्या क्या सबसे पहले लाएं, व्यक्ति आत्मानुभूति से पहले अपने जीवन को कैसे बनाएं, यह बात उसमें बताई गई है। और ये भी बताया है कि जब तक व्यक्ति समय सार की अनुभूति के लिए आत्मानुभूति के लिए योग्य नहीं बनता तब तक वह अपनी भूमिका में योग्य बने, ऐसा कहा है। भूमिका को निर्मित करे, आत्मानुभूति की भूमिका को प्रबल बनाए बिना आत्मानुभूति नहीं कर सकता। आत्मानुभूति को वही कर सकता है जो उसकी भूमिका में है। तो उसकी भूमिका क्या है प्रश्न पूछने पर उसमें बताया है, वही क्या परिग्रह, परिग्रह बाधक है आत्मानुभूति के लिए। कितने प्रकार का परिग्रह बाधक है, 24 प्रकार का परिग्रह आत्मानुभूति करने के लिए बाधा पहुंचाते हैं। गृहस्थ क्या होता है, परिग्रह की मूर्ति है, वो परिग्रह की मूर्ति, पांव से लेकर सिर तक भी परिग्रह है, और वो जहां रहता है वह भी स्वयं एक परिग्रह है, उसमें जो भरता है परिग्रह को ही भरता है, और ये सब करके जब वह सोचता है, परिग्रह का ही सोचता है, जब वह ध्यान करता है तो परिग्रह का ही ध्यान करता है, जब वो देखता है क्या, जब वह देखता है परिग्रह को ही देखता है, जब वह सो जाता है सपना देखता है, उस समय में भी वह परिग्रह को ही देखता है। गृहस्थ का जीवन क्या है, गृहस्थ का जीवन आत्मामय नहीं बन सकता, समय सार मय नहीं बन सकता। समय सार को पढ़ना अलग है, समय सार का ज्ञान प्राप्त करना अलग है, समय सार में जो तत्व लिखे गए हैं उनको समझना बात अलग है, लेकिन तत्वानुभूति तो केवल समझने से नहीं होती है ना। आपको डॉक्टर बनना है तो 16 साल 20 साल आपने विद्यार्थी अवस्था में व्यतीत किया। डॉक्टर क्या होता है, कैसे बनता है, यह विद्यार्थी अवस्था में ही पता चल जाता है, लेकिन ऑपरेशन किया कैसे किया जाता है व्यक्ति का, यह विद्यार्थी अवस्था में नहीं सीखता। प्रैक्टिकल वहां भी करते हैं, बात अलग है, लेकिन एक सफल ऑपरेशन जीवित व्यक्ति है उसका पेट फाड़ करके ऑपरेशन करना, जोड़ना और उसको बचा लेना, ये कब संभव? ये तो तभी संभव जब 20 साल पढ़े हो, वहां पर प्रैक्टिकल किया हो, और वहां प्रैक्टिकल करते समय जीवित मनुष्य को चीरापाड़ी नहीं की जाती है ना, किसको, जो मरा हुआ है उसको लाते हैं, देखो जीवित व्यक्ति को नहीं सोचते विद्यार्थी अवस्था में प्रैक्टिकल करने के लिए, मरे हुए व्यक्ति को ला करके रखते हैं और उसका फाड़ना, पार्ट्स का ज्ञान कराना, कहां कहां पर कौन कौन सा रोग हो सकता है, कैसे ऑपरेशन किया जाता है, कैसे चीरा जाता है और कैसा जोड़ा जाता है, सारी बातें प्रैक्टिकल रूप में शुरू से ही कराई जाती है। जब इतने में वह परिपूर्ण हो जाता है तब कहीं 20 साल बाद जाकर के वह एक सफल डॉक्टर बनता है और किसी का ऑपरेशन करके एक अद्भुत घटना को, एक अद्भुत आनंद को, पहली बार ऑपरेशन जब करेगा डॉक्टर अवस्था में आनंद की अनुभूति करेगा कि नहीं, पहली बार ऑपरेशन किया और मरीज बच गया और बहुत अच्छा हो गया, गंभीर ऑपरेशन था इसके बावजूद भी मैं मरीज को बचा लिया, अपने आप में एक अनुभूति करता है। ये अनुभूति कब मिली, डॉक्टर बनने के बाद ही मिली ना, सर्टिफिकेट मिला, अस्पताल खोला, मरीज आने लगे, दवाई देना शुरू हो गया, उस समय आनंद आएगा या पढ़ते समय, MBBS करते समय ही आनंद आएगा, वो नहीं आएगा। ऐसे समय सार ग्रंथ में महावीर भगवान ने समझाया है, श्रावक विद्यार्थी है और मुनि डॉक्टर है, श्रावक विद्यार्थी है और मुनि डॉक्टर है, यही श्रावक स्टेप बाय स्टेप अहिंसा की साधना करता 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 जब व्यवहारिक हिंसा से परे हो जाता है, व्यावहारिक स्तर पर बाहर में संसार में जीते जी जो हिंसा होती है उसको पूर्णतः जब त्याग कर देता है और उस हिंसा से बच जाता है, तो उस वक्त वह सर्टिफिकेट पाता है, मैंने पूरी तरह से हिंसा को त्याग दिया है, हाथ में सर्टिफिकेट आ गया तो सोचिए क्या बन चुका होता है, वो मुनि बन चुका होता है। जिस दिन आपके जीवन में छोटी बड़ी सब प्रकार की हिंसा रुक गई, उस हिंसा से मुक्त हो गए, उस दिन आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ गया, अहिंसा सर्टिफिकेट। अब आप क्या हैं, आप एक आदर्श मानव हैं, उच्चतम मानव हैं। आदर्श मानव हैं, उच्चतम मानव हैं, और उच्चतम मानवों में आप एक पारलौकिक क्षेत्र के सबसे बड़े डॉक्टर बन गए, आत्मा का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर आप बन गए। अब उस अहिंसा तत्व के माध्यम से आप भीतरी ऑपरेशन करते रहेंगे, बाहर का ऑपरेशन कर दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया, एक तरफ की हिंसा तो पूरी तरह से रुक गया। ऑपरेशन वह बहुत बड़ा कठिन होता है जो भीतर का होता है। हार्ट ऑपरेशन और माइंड ऑपरेशन, इन दोनों में से कौन सा कठिन है? ये है कि ये है? बहुत कठिन मानते हैं ना। माइंड ऑपरेशन बहुत कठिन है क्योंकि राज्य सरकार बिगड़ जाए कहीं भी कुछ नहीं होता, इतना बिगड़ता नहीं कुछ भी। केंद्र सरकार में कुछ गड़बड़ी हो गई तो पूरा देश प्रभावित होता है। ये कौन सा सरकार है? ये केंद्र सरकार है और ये राज्य सरकार। मरण के कारण ये भी हो सकता है, मरण का कारण ये भी बन सकता है। ये धड़कन बढ़ गया तो भी अस्पताल जाते हैं और यहाँ दर्द होने, टेंशन आ गया, दर्द होने लगा तो भी अस्पताल जाना पड़ता है। दोनों का ऑपरेशन आवश्यक है। इसका डॉक्टर बनना, इसके नीचे का डॉक्टर बनना बहुत आसान है, किंतु केंद्र सरकार के अंदर जाकर के उस सरकार का ऑपरेशन करना बहुत बड़ा कठिन है। कितनी शक्ति जुटानी पड़ती है, राष्ट्रपति का चुनाव और प्रधानमंत्री का चुनाव करने के लिए कितनी मेहनत होती है। पहला नीचे वाले सब चुन के आ जाएं, फिर ऊपर वाले, नीचे वाले ऊपर जाएं, फिर वहां पर ये सब मिल करके मुख्य मुख्य लोग उनका चुनाव करें। जो माइंड ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर होता है वो बहुत पढ़ता है। कितने साल पढ़ता होगा, ये सामान्य MBBS करने से नहीं चलता। इसके बाद भी और भी कोर्स होते हैं, उस कोर्स को पूर्ण करने के बाद वह माइंड ऑपरेशन वाला डॉक्टर बनता है। ठीक इसी तरह से समय सार में ये कहा है, आत्मा का ऑपरेशन करने की कला सिखाई है समय सार ग्रंथ में। साधु बनने के बाद आपके लिए बाहरी सर्टिफिकेट मिलता है तो आप एक ऐसे सर्जन बन गए जो हार्ट ऑपरेशन तो कर सकते हैं लेकिन माइंड ऑपरेशन नहीं कर सकते। साधु बनने के बाद आत्मा की अनुभूति हो जाए ये कोई गारंटी नहीं है। साधु को भी आत्मानुभूति हो ये नियम नहीं है, किंतु आत्मानुभूति यदि कोई करेगा तो वह साधु ही करेगा, गृहस्थ नहीं करेगा। ये नियम है, ये सिद्धांत है। आत्मा की अनुभूति जो भी करेगा, ध्यान जिसको भी लगेगा वह मुनि ही रहेगा, गृहस्थ नहीं रहेगा। क्योंकि गृहस्थ इन दोनों में से एक भी नहीं है, ना हार्ट का डॉक्टर बना ना माइंड का डॉक्टर बना, दोनों ही सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हार्ट ऑपरेशन के डॉक्टर बनने का वह कोशिश कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, पायलक अवस्था। सावकों में सबसे ऊंचाई की अवस्था है, इसलिए अहिलक को उत्कृष्ट श्रावक कहा है। उत्कृष्ट श्रावक अहिलक और उसके नीचे शुल्लक है, ये दोनों उत्कृष्ट श्रावक हैं, 11 प्रतिमाधारी हैं। ये उत्कृष्ट श्रावक दोनों ये भी डॉक्टर नहीं है, ये भी आत्मानुभूति नहीं कर सकते, ये भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हिंसा दो प्रकार की है ना, एक बहिरंग और एक अंतरंग। क्या क्षुल्लक और अहिलक अवस्था में हिंसा छूट चुकी है? नहीं है। अहिलक को क्या हिंसा रह गई है जीवन में? अभी वस्त्र है, वस्त्र संबंध, वस्त्र यदि है तो वस्त्र से तो जल का एक जीव की हिंसा होगी, जल का प्रयोग होगा ही होगा धोने के लिए। वस्त्र धो करके पहनने वाला बहिरंग हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता, बहिरंग हिंसा को पूर्णतः नहीं रोक सकता। क्या रोक सकेगा? और अंतिम परिग्रह है, एक ही वस्त्र बच गया, एक लंगोटी बच गई है। एक लंगोटी के कारण से भी बहिरंग हिंसा होती रहती है, उसको रोकना आत्मानुभूति के लिए अनिवार्य है क्या? नहीं। आत्मानुभूति करना चाहते हैं तो उसको रोकना भी आवश्यक ही होगा, आवश्यक है। उसको रोक दिया तो अब क्या बन गया? एक लंगोटी संबंधी हिंसा को भी उसने रोका तो क्या बन गया? आवाज कुछ कम आ रही है, आ रही सबको? बंद है क्या वो? आ रही? एक लंगोटी छोड़ने के उपरांत, एक लंगोटी छोड़ने के उपरांत वह क्या बन जाएगा? मुनि ही बन जाएगा, डायरेक्ट मुनि बन जाएगा। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? एक ही बचा है। और अब डायरेक्ट भी क्या है? नीचे से ऊपर आने वाले को डायरेक्ट बोला जाता है, अहिलक से मुनि बनने वाले डायरेक्ट कहते हैं। नहीं, उसके बाद तो मुनि बनना ही शेष रह गया है। मुनि बन जाएगा और मुनि बनने के उपरांत अब हम कह सकते हैं कि बहिरंग हिंसा कुछ भी अब नहीं होने वाली, न हो सकती है। बस यहां तक आना चाहिए। आत्मा की अनुभूति करना हो, सामायिक करना हो, ध्यान करना हो, इस सब के लिए यहां तक आना पड़ता है। सामायिक किसको होता है? श्रावक सामायिक कर सकता है क्या? लेकिन प्रश्न तो पूछते हैं महाराज से, महाराज आप तो सामायिक करते हो, बहुत आनंद आता है, हमको भी जरा सिखाओ ना सामायिक कैसे करना चाहिए। सीखना चाहता है, रुचि रहती नहीं? रहती है। मंदिर में बैठ के, मंदिर में आकर दर्शन, भगवान का दर्शन करके जब जाप करने के लिए बैठता हूं तो मन ठहरता नहीं, मन दौड़ता है, चंचल होता है। ये सब क्यों होता है? मेरे लिए ध्यान कैसे करना चाहिए, मन को एकाग्र कैसे करना चाहिए, ये सब पूछता है मुनि महाराज से। तो क्या मुनि महाराज जी बताएंगे, बैठ जाओ मैं जादू करता हूँ और तुम तुम्हारा सामायिक होने लग जाएगा। ये कोई जादू की बात है? और मन चंचल होता है तो क्या मन को सांकल से बांध करके रख करके सामायिक कर ले, मन को किसी से बांधा जाए? स्पीड बहुत है, तुम बांधना तो दूर, मन को जैसे ही चुपचाप उसका स्पर्श भी करने के लिए जाओगे, स्पर्श करने से पहले ही भाग जाता है। मक्खी जमीन पर बैठी हो और धीरे से ले जाना, मक्खी को स्पर्श करना, मासी मासी मक्खी है ना, मासी मासी को स्पर्श करना, स्पर्श करके बताना आप, मक्खी पकड़ में नहीं आती, स्पर्श करने नहीं देती। धीरे से ले जाना अंगुली को, धीरे से, बिल्कुल स्लो, उसको पता भी ना चले। पीछे से जाना, आगे से नहीं, आगे से जाओगे तो बहुत जल्दी उड़ती है वो, पीछे से धीरे 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 जाना, मक्खी को छू नहीं पाओगे आप। बहुत कुशल होती है मासी, मौसी नहीं मासी, मासी बहुत कुशल होती है। धीरे से आप कर रहे हैं, आप अभी 4 इंच दूर थे उस समय मासी उड़ गई। मन इतना ही चंचल है और गृहस्थ अवस्था में तो चंचल ही चंचल होता है। उस चंचलता का कारण क्या है लोग जानते नहीं और आत्मानुभूति चाहते हैं, नहीं समझे? आत्मानुभूति चाहते हैं लेकिन मन चंचल क्यों है ये नहीं जानते, उसका सूत्र नहीं जानते। और उसका सूत्र है परिग्रह, है क्या नहीं? आप जब भी आप मन चंचल होता है तब विचार कर लेना, सोच लेना ये मन चंचल क्यों हुआ, उसका कारण ढूंढना, अपने आप में मिलेगा। क्या कारण रहेगा? परिग्रह के कारण से। मंदिर में जाओ और जाप करने के लिए एक दिन बैठ जाओ और ये संकल्प ले लो कि मन को मैं ज्यादा एकाग्र करूंगा और चंचल किए बिना 108 बार एक माला फेरूंगा। बैठ जाओ, आप बैठ नहीं पाएंगे, पूरी माला नहीं हो पाएगी। और 108 बार जाप करना होता है एक माला में, 108 जाप में 108 बार वो घूम करके आ जाता है। उसका भी नियम है ना, मन भी कहता है मुझे बांधने आ रहे हैं, 108 रस्सी लेकर के बांधने आ रहे हैं, मैं 108 बार कूद करके बैठ जाऊंगा। मन भी बहुत कुशल है, मासी की तरह है, आप एक बार भी नहीं पकड़ सकेंगे उसको। और जिसको मन पकड़ में आने लग जाए, आसान हो जाए, तो वह बहुत दिन तक गृहस्थ अवस्था में रह नहीं सकेगा। जिस गृहस्थ का मन कंट्रोल होने लग गया, जिस गृहस्थ को सामायिक होने लग गया, मन की चंचलता रुक गई, तो समझ लेना मुनि बनने का समय आ गया है। जो जिसका मुनि बनने का समय आता है पास, उसका मन रुकने लगता है अपने आप में। एक व्यक्ति जिसको कल के दिन दीक्षा लेना है, एक गृहस्थ, एक श्रावक जिसको कल के दिन ही दीक्षा लेना है और वह गुरु से संपर्क कर रहा है, गुरु ने कहा तुम मुनि बनने से पहले सामायिक करना सीखना, एक सामायिक करके आना, एक सामायिक मुनि बनने से पहले एक सामायिक करके आना और मंदिर में जाना, भगवान की पूजन करना, जाप देना और सामायिक करना, एक बार सामायिक करके आना और फिर आ करके तुम मुनि दीक्षा लेना, आते ही मैं दे दूंगा और लेकिन शर्त यह है कि तुमने जो मुनि बनने के पहले दिन आत्मा का ध्यान किया, चिंतन किया, वो कैसा था, उसको मन से व्यक्त किए बिना दीक्षा नहीं मिलेगी। ऐसा मान लो किसी गुरु ने शिष्य के लिए कहा, मुनि दीक्षा वाले शिष्य के लिए, मुनि दीक्षा लेने वाले शिष्य सामायिक करके जाता है, गुरु से निवेदन करता है, महाराज हो गया, आपने जो कुछ किया कहा था वो सब कुछ मैंने कर लिया है, और आप जो भी पूछना चाहो सामायिक के संबंध में और आप पूछिए, लेकिन ध्यान रखो झूठ नहीं बोलना, दीक्षा ले रहे हो, मैं जो जो पूछूंगा सब बताना पड़ेगा। नहीं महाराज बिल्कुल बताऊंगा, झूठ क्यों बोलूंगा, मुनि बनने आया हूं और झूठ बोलूंगा और गुरु से झूठ बोलूंगा, नहीं ये तो असंभव। जैसी मेरी अनुभूति सामायिक काल में थी, जैसे विचार आए थे, जो कुछ भी घटना घटी थी वो सब कुछ आपके सामने मैं रख रहा हूं, आप पूछो तो सही, क्या पूछना चाहते। गुरु पूछते हैं मन कहां कहां तुम्हारा गया सामायिक करते समय, तो वह व्यक्ति सत्य तो बोलेगा ना, तो आप विचार करिए, अनुमान करिए उसका मन कहां कहां गया होगा, अनुमान से सोचो आप कहां कहां गया होगा है? घर में घूम रहा होगा क्या, कल की दीक्षा है और गुरु दीक्षा देने वाले हैं और ये सामायिक अच्छी तरह से करना चाहिए, गुरु मन में आ रहे होंगे, या कल कौन सी दुकान करना है और कौन सा माल लाना है, कौन सा रखना है, ये संसार की बातें आएंगी। गुरु तो आएंगे ही, दीक्षा लेना है तो बार बार गुरु आएंगे। अब वह व्यक्ति क्या कहेगा बोलो, वैरागी है और कल के दिन दीक्षा लेने वाला था और उसका सामायिक एक दिन पहले का सामायिक गृहस्थ अवस्था का घर में उसने किया, चाहे घर में बैठ करके किया हो, चाहे मंदिर में बैठ करके किया हो, चाहे जंगल में बैठ करके किया हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस व्यक्ति के लिए, सब परिग्रह छोड़ना ही है तो फिर कहीं भी बैठ करके करें, मन की चंचलता तो हो नहीं सकती। अब तो वह व्यक्ति यही कहेगा ना, मेरा मन आपके चरणों में था, यही कहेगा, आपके चरणों में था और भगवान के चरणों में मंदिर में था, ये दो छोड़ करके कहीं भी मन जा नहीं रहा था, यही कहेगा। आया तो सही है, एक दिन गृहस्थ अवस्था में एक दिन वह मन रुका तो सही, लेकिन कब रुका ये? सच्चा वैराग्य होने के बाद रुका, सच्ची विरक्ति आने के बाद ये अवस्था आई। भरत चक्रवर्ती इस टाइप का सामायिक करते थे, शास्त्रों में कहा जाता है उनका मन गृहस्थ अवस्था में रह करके भी, एक राजा रह करके भी, एक चक्रवर्ती रह करके भी इतना स्थिर था, उस स्थिरता का कारण क्या होगा विचार करो, क्या कारण? वैराग्य। वैराग्य के बिना मन को रोक नहीं सकते। हम क्या चाहते हैं मालूम? नहीं, संसार सुख तो छोड़ना नहीं, दुकान भी नहीं छोड़ना और परिवार भी नहीं छोड़ना, बाल बच्चे हैं पीछे बहुत बचे हैं, बाल बच्चे हैं छोड़ करके नहीं आ सकता क्योंकि पीछे ये सब बचे हैं, बाल बच्चे हैं, इनको कैसे छोड़ सकता। लेकिन महाराज सामायिक करने के भाव तो बहुत होते हैं, कुछ मन की चंचलता को रोकने का क्या उपाय है बताओ तो सही। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, मैं क्या बताऊं, मक्खी पकड़ में उनके आती नहीं और वो चाहते हैं कि मासी को पकड़ लूं। मासी बार बार आकर के तकलीफ देती है, ये इस करो फिर वही आती है, ऐसा करो फिर वही आती है। मक्खी जैसी हठीली कोई प्राणी नहीं होती। मक्खी को आप केला खा रहे हैं तो केले के ऊपर आकर के बैठेगी, गुड़ खा रहे हैं तो भी गुड़ खाएगी। मक्खी कहती है कि तुम खा रहे हो, मैं कब खाऊंगी, मुझे भी प्रसाद कुछ, मेरे को छोड़ के खाते हो, मुझे भी चाहिए। आप हटा हटा करके खाते रहते हैं लेकिन मक्खी देखो तो सही, बार बार वही आती है, बार बार वही आती है। और मक्खी बैठने के उपरांत तो उसको खाया नहीं जाता, ऐसा लगता है कि मक्खी बैठ गई, पूछ के खा लेते आप। कौन पसंद करता है खाने पीने की वस्तु पर जो मक्खी बैठ गई, उसको खाने के भाव नहीं आते लेकिन खाना पड़ता है। अब वस्तु तो फेंक तो नहीं सकते। कई लोगों की स्थिति तो घर में ये होती है कि जिस भोजन वस्तु में, जिस मिठाई में या जिस किसी अच्छी चीज में अभी बनी है और उसमें एक मरी हुई चींटी निकली, छोड़ने के भाव आते हैं क्या भोजन को? जैसे मुनि महाराज अंतराय करके उस दिन उपवास करते हैं, बीच में चींटी आ जाए, अंतराय करते ही कि खा लेते हैं, कि महाराज ये कहते हैं कि चींटी है निकाल के दे दो, ऐसा कहते हैं क्या? लेकिन आप अपने आप को देखो, पहले सामायिक बाद में सिखाऊंगा, तो चींटी आने पर आप पदार्थ का क्या करते हैं? मूंगी आने पर, चींटी नहीं, चींटी नहीं, मूंगी आने पर आप क्या करते हैं? उसको निकाल के डाल देते हैं और खा लेते हैं। अब बताइए आप, वस्तुतः देखा जाए उसको नहीं खाना चाहिए। इसलिए खाने की पद्धति सीखो, कैसा खाना चाहिए। अगर किसी वस्तु में, खाने पीने की वस्तु में चींटी गिर गई तो नहीं खाना चाहिए। तो उस चीज को मत खाओ, अन्य चीज है ना उसको खाओ। क्या बिगड़ता है, एक वस्तु का त्याग करो उस दिन, नहीं आज ये चीज नहीं खाएंगे, निकाल करके खा रहे हो और फिर सामायिक भी करना चाहते हो। आहार ही शुद्ध नहीं है तो फिर मन शुद्ध कैसे होगा? सामायिक करना चाहते और गृहस्थ वो कहता है महाराज मैं तो समय सार 108 बार पढ़ चुका हूं और मुझे सामायिक होता है, ये कहते हैं। तो क्या कोई भी गृहस्थ हो, चक्रवर्ती भी हो, मैंने जिसको कहा कि एक दिन पहले सामायिक कर रहा है और दूसरे दिन दीक्षा लेने वाला है, उसको भी क्या आत्मा की अनुभूति होगी? आत्मा की अनुभूति तो नहीं होगी, मन में स्थिरता जरूर आ सकती है। शुद्ध आत्मा की अनुभूति तब तक नहीं होती जब तक कि हम पूरी तरह से परिग्रह को उतार कर मुनि नहीं बनेंगे, दिगंबर नहीं बनेंगे और आत्मा में सभी विकल्प, अन्य विकल्प भी छोड़कर, मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे प्रवचन करना है, मुझे तत्व चर्चा करना है, ये भी विकल्प की बातें हैं क्या? नहीं, मुनि बनने के बाद इनको भी छोड़ करके जब तक आत्मा में नहीं बैठेंगे निर्विकल्प होकर, तब तक उस मुनि को आत्मानुभूति नहीं होती। आप बताएं, इस समय मैं प्रवचन कर रहा हूं, क्या मुझे आत्मा की अनुभूति है इस समय? आत्मा की ही बात बता रहा हूं, समय सार की ही बात बता रहा हूं, आत्मा शुद्ध है, परिशुद्ध है, बिल्कुल बुद्ध है, ज्ञानी है, शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी है, कर्मों से रहित है, शरीर से रहित है, भिन्न है, स्वच्छ है, निर्मल है, बहुत वर्णन कर रहा हूँ, बहुत शब्द जोड़ रहा हूँ, जितना शब्द जोड़ूंगा उतना स्वच्छ होता है ना आत्मा। तो क्या शब्दों में कहते 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 आत्मा की अनुभूति आएगी, मेरा सामायिक हो जाएगा? प्रवचन के समय में सामायिक नहीं होता और सामायिक के समय में प्रवचन नहीं रहता। अनुभूति तो अनुभूति है, उसमें विचार भी रुक जाते हैं, चिंतन भी रुक जाता है और वहां पर निर्विकल्पता आती है। निर्विकल्प यानी विकल्प से मुक्तता, विकल्प से रहितता, वहां सारे विकल्प रुक जाते हैं। क्या ये कहें सामायिक बैठने के बाद सामायिक में आत्मा का चिंतन करने से आत्मा की अनुभूति होती है, हो जाएगी? चिंतन से भी नहीं होती, वो आत्मा की अनुभूति आत्मा का चिंतन करने से भी नहीं होती। तो कैसे होती है? चिंतन को भी रोको और फिर क्या करो, कुछ भी नहीं करो तो ऐसे कैसे चलेगा, चल जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही बैठना, फिर क्या सोचना, सोचना ही तो चिंतन करना है। कुछ भी चिंतन नहीं करना, कुछ भी सोचना नहीं, तो ऐसे कैसे रह सकता है? रह सकते हैं, रह सकते हैं। तो क्या विचार करना, विचार भी नहीं करना, सोचना भी नहीं, तो क्या करना, कुछ नहीं करना, बैठना। तो फिर करना क्या उस समय? करने धरने को ही सामायिक समझते हो ना, यही गलती है। नींद, नींद आया तो और भी नहीं होगी, नींद तो बहुत बड़ा दोष है। सामायिक में नींद नहीं रहती, सामायिक में एकदम जागृत अवस्था रहती है, लेकिन विकल्प भी नहीं रहते, विचार भी नहीं रहते, कुछ नहीं रहते। और यह समय बहुत समय तक नहीं आता, अल्प समय के लिए होता है, वो एक दो मिनट हो जाए बहुत हो गया, उत्कृष्ट हो गया। तो क्या करना उस समय? उस समय कुछ नहीं करना, यही करना है, बता रहे हैं ना, कुछ भी नहीं करना, यही करना। आप करने धरने को ही सामायिक समझते, कुछ भी न करना यही सामायिक है, निर्विकल्प दशा। करने के भाव विकल्प है क्या? नहीं, मैं ये करूं, वो करूं, क्या करना, वो करूं क्या, ये विकल्प है क्या? नहीं। तो निर्विकल्प का नाम सामायिक कहा है, तो विकल्प में सामायिक की सिद्धि कैसी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो वहां पर क्या दशा होती है ये मालूम नहीं है हमें, वहां पर कुछ भी नहीं रहता, आत्मा है और आत्मा के भीतर जानने और देखने की शक्ति तो है ही, कुछ न कुछ दिखता रहता है और कुछ न कुछ विचार चलता रहता। इन विचारधाराओं को रोकना, जो हम जानबूझ करके करते रहते हैं, ये हो गया अब ये विचार करना, ये हो गया अब ये विचार करना, ये बुद्धिपूर्वक हो रहा है, बुद्धिपूर्वक यानी जानबूझकर हम अपने तरफ से प्रयत्नशील होकर के जो विचार कर रहे हैं उन विचारों को रोकना। प्रयत्नशील रहते हुए जिन विचारों को हम कर रहे हैं उनको रोक सकते हैं कि नहीं? रोक सकते हैं। अब प्रयत्न के बिना जो विचार होते हैं वो स्वाभाविक होते हैं, विचार दो प्रकार के, एक बुद्धिपूर्वक विचार और एक अबुद्धिपूर्वक विचार। जब आप स्वप्न में जाते हैं तो आपको क्या स्वप्न में होश रहता है? बेहोश रहते हैं आप। कोई व्यक्ति आकर के छू रहा है तो आपको पता नहीं है, कोई जगा रहा है तो पता नहीं, आप सपने में मस्त हैं। ये होता है कि नहीं? अनुभूत अनुभव है आपको, सपने आते हैं कि नहीं आपको? ऐसा कोई व्यक्ति है इसमें जिसको स्वप्न नहीं आया हो? स्वप्न जिसको बिल्कुल जिंदगी में एक बार भी उसने स्वप्न न देखा हो, ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा? सभी को स्वप्न आते हैं, अच्छे आए बुरे आए बात अलग है, स्वप्न तो आते हैं। स्वप्न दशा में वह होश में रहता है कि बेहोश? बेहोश। और स्वप्न कब आते हैं? निद्रा में या जागृत अवस्था में? मैं आपसे ये प्रैक्टिकल करवाना चाहता हूँ, निद्रा अवस्था में ही स्वप्न आते हैं, यह अनुभूति आपकी सत्य है। लेकिन इसको भी सत्य बना के बताओ कि निद्रा तो नहीं करना और स्वप्न देखना, बोलो सत्य करके बताओ इसको, निद्रा नहीं करना और सपना देखना। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है? निद्रा में तो है ही नहीं वो, लेकिन स्वप्न देख रहा। महाराज निद्रा ही नहीं है तो फिर सपना ही कैसे? जो सपना होता है वो निद्रा में ही आता है, जो स्वप्न होते हैं वो निद्रा में ही आते हैं, और जो निद्रा में नहीं है उनको स्वप्न आ ही नहीं सकते। निद्रा में नहीं है, जागृत अवस्था में है, और वह चंचल नहीं है। स्वप्न में भी मन चंचल नहीं होता, बाहर नहीं जाता कहीं भी, अपने आप में मस्त हैं आप। दुनिया का व्यक्ति जगा रहा है आपको, पैर हिला रहा है, चादर खींच रहा है, आप स्वप्न में थे, वो दो मिनट कहाँ थे? आप बाहर नहीं थे, भीतर ही थे, सपना देख रहे थे, भले ही कुछ भी देखते रहे हो। समय शिक्र जी गए हों, ये भी हो सकता है सपने में, या आपके यहाँ रिश्तेदार के यहाँ गए हों, या दुकान में ही बैठे हों। बोला आपको स्वप्न किस प्रकार के ज्यादा आते हैं, दुकान के आते हैं, या खाने पीने के आते हैं, या समय शिखर के आते हैं, क्या महाराज के प्रवचन में बैठे हैं, महाराज का प्रवचन सुन रहे हैं, ये आते कौन से ज्यादा आते? मुझे मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से मैं बता सकता हूँ, जो आप ज्यादा काम करते हैं, जिसमें आप दिन रात रहते हैं, जो अधिक से अधिक काम करते हैं, उस कार्यकलाप संबंधी स्वप्न आपको ज्यादा आना ही चाहिए, आते ही हैं, गारंटी है। मेरी अनुभूति गलत हो तो बताओ, है कि नहीं? जब भी स्वप्न पड़ता है आप देखिए ये स्वप्न किस कारण से आया, कारण ढूंढो, पता चलेगा आपको। मैंने इस प्रकार का काम ज्यादा किया था, इस प्रकार का विचार हमने ज्यादा किया था, कब? जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में मैं ये काम ज्यादा किया था, इसलिए ये स्वप्न आया। ऐसा रहता है? हाँ? बिल्कुल। जागृत अवस्था में जो आप अधिक से अधिक रुचि पूर्वक जिस काम को करते हैं ना, वो स्वप्न में भी आता है। और जो आप चाहते हैं वो सब कुछ हो सकता है। जब इधर होता है तो फिर आत्मा के धर्म के क्षेत्र में भी होना ही चाहिए, सामयिक के क्षेत्र में भी होना ही चाहिए। देखो जो व्यक्ति बार बार मुनि बनने का विचार कर रहा है, मुनि बनने का सपना देखेगा कि नहीं? निश्चित देखेगा। जागृत अवस्था में जो सोचता है वह अवश्य एक न एक बार स्वप्न में आता है। मैं ये बता रहा था स्वप्न जागृत अवस्था में नहीं आता, ये सत्य है क्या नहीं? और स्वप्न निद्रा अवस्था में ही आता है, ये सत्य है क्या नहीं? सत्य। स्वप्न के लिए निद्रा चाहिए और सामयिक के लिए निद्रा चाहिए नहीं। सामयिक करते 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 सो जाओ, सामयिक में मग्न हो जाओ। कितनी माला फेरे महाराज? सपने में था 22 माला फेरा। संभव है? आप जो ही निद्रा को स्पर्श कर लेते हैं सामयिक छूट जाता है। आप जागृत अवस्था में जो कर रहे थे वो रहता नहीं। ये करके बताओ प्रैक्टिकल हमें। ध्यान करने बैठ जाओ, ध्यान करते 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 नींद लेना और उस ध्यान को कंटिन्यू करना, निद्रा में भी कंटिन्यू हो जाए वो। कभी होता है? ये भी सत्य है, नहीं होता। तो निद्रा को सामयिक कैसे कह सकते हम? नहीं कह सकते। निद्रा सामयिक नहीं और सामयिक सो निद्रा नहीं। जहां सामयिक होता है वहां निद्रा होती ही नहीं। तो होती क्या है? जागृत अवस्था, एकदम जागरण में रहता है, संवेदनशील रहता है, दुनिया को भूलता है, जागृत होकर के अपने में चिंतनशील रहता है। चिंतनशील होते 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 चिंतन को भी, जो बुद्धिपूर्वक चिंतन चल रहा है उस चिंतन को भी त्याग देता है। फिर वह तटस्थ हो जाता है, फिर विचार मैं अपने तरफ से नहीं करूंगा, जो स्वाभाविक रूप से हो रहा है उसको केवल मैं जानूंगा और देखूंगा, जानूंगा देखूंगा। जानने देखने का काम भी बुद्धि पूर्वक नहीं करूंगा, प्रयत्न पूर्वक नहीं करूंगा, जो स्वाभाविक रूप से हो रहा है उसको केवल देखूंगा छोड़ूंगा, देखूंगा छोड़ूंगा। दृष्टि में जैसे ही एक वस्तु आई उसको देखा छोड़ दिया, देखा छोड़ दिया, साक्षी बनाकर जो भी मन में याद आ रहा है अपने आप स्वाभाविक रूप से, याद करना नहीं, स्वाभाविक रूप से जो याद आ रहा है, स्मरण में आ रहा है, ज्ञान के पटल पर आ रहा है, पर्दे पर आ रहा है, उस पर्दे पर आए, ज्ञान के पर्दे पर आए हुए चित्रों को केवल जानो देखो, जानो देखो। वहां पर हर्ष विषाद नहीं करना, वहां राग द्वेष नहीं करना, बाहर का कोई विकल्प आने नहीं देना, केवल जानना और केवल देखना, केवल जानना केवल देखना, उस अवस्था में जाना है और वहां ठहरना कुछ समय। बुद्धि पूर्वक मैं करूं ये विचार करूं ये भी नहीं लाना, जो आ रहा है आएगा, उसका स्वभाव है, नियम है, वो आज जो आ रहा है दिख रहा है उसको केवल जानना और देखना, जानना और देखना। महाराज गलत विषय भी आता है, आने दो, कुछ भी आने दो मन में, कोई दिक्कत नहीं। आपको केवल मन को खराब नहीं करना, सबको देखना है जानना है, देखना है जानना है, देख करके छोड़ना है बस। उसमें हेरा फेरी कुछ भी नहीं करना, ये गलत आ रहा है ऐसा भी नहीं कहना, ये सही आ रहा है ऐसा भी नहीं कहना। व्यक्ति जब सामयिक करता है उसके दिल में एक भ्रम होता है, वो ये सोचता है कि गलत विषय मेरे दिल में आया तो सामयिक तो मेरा टूट गया था, ऐसा सोचता है। लेकिन वो सामयिक टूटा नहीं, बराबर चल रहा है। गलत विषय आने पर, कोई भी गलत दृश्य आया स्वाभाविक रूप से आया, आपको मन बिगाड़ने की जरूरत नहीं, मन को बिगाड़ने की जरूरत नहीं, मन बिगड़ गया तो सामायिक बिगड़ता। आप मन में ऐसा सोचने लग जाए ये गलत विषय आ गया, मेरा सामायिक सामायिक टूट गया, इसके कारण से सामायिक टूट गया। सामायिक को तोड़ना नहीं, गलत आ रहा है आने दो, सही आ रहा है आने दो, उसको केवल क्या करना है, साक्षी बनाना है, जानना है और देखना है और निकालना है। फिल्म आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें क्या आ रहे हैं क्या जा रहे हैं दिख तो रहा है, लेकिन मन में हर्ष विषाद नहीं है। हर्ष विषाद करने से सामायिक टूटता है, हर्ष विषाद नहीं करोगे तो सामायिक बराबर बना रहता है। गलत आ रहा है आप घबरा जाते हैं कि ये गलत आ रहा है, सामायिक में तो नहीं आना चाहिए, गलत आ रहा है। नहीं, सामायिक में गलत भी आएगा तो सामायिक का भंग नहीं होगा, सही भी आएगा तो भी सामायिक का भंग नहीं होगा। सही है ये, प्रैक्टिकल करके देखना। और ये ध्यान आपको बहुत स्वस्थ बनाता है, आप शरीर से भी स्वस्थ होंगे, मानसिकता से भी स्वस्थ होंगे। ये ऐसा मेंटल मेडिसिन है, ये बहुत उत्कृष्ट मेडिसिन है। ये जिसको हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक की बीमारी रहती है, वो मरीज भी ठीक हो सकता है। इससे ध्यान के माध्यम से हम कई रोगों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान करने की प्रक्रिया, ध्यान करने की वो सूत्र, ध्यान करने की संधियां, ध्यान करने की कला, ध्यान करने की जो पद्धति शैली, उसको सीखना पड़ेगा। पद्धति मालूम न होने से व्यक्ति ध्यान नहीं कर पाता। ध्यान में क्या हार्ट अटैक नहीं हो सकता? गलत ध्यान कर रहा हो और मग्न हो गया हो, बहुत ही आनंदित हो गया, तो वह आनंद काम का नहीं। ध्यान आनंद अवस्था का नाम जरूर है, लेकिन हर्ष विषाद का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान करते समय व्यक्ति ध्यान में जब रहता है, उस समय आने वाले गलत और अच्छे इन दृश्यों से विकल्पित नहीं होना। ये क्यों आया ऐसा नहीं कहना, वो क्यों नहीं आ रहा है ऐसा भी नहीं कहना। तो आपको अभी अच्छा बुरा में राग द्वेष है, राग द्वेष करना ही नहीं। देखो, एक दुश्मन आपके सामने आके खड़ा है, आपको बहुत जिंदगी में उसने सताया है, बहुत ही अनिष्ट किया है, तो उसके आकर खड़े रहने पर आपको क्या सोचना चाहिए? बुरा सोचना चाहिए कि अच्छा सोचना चाहिए? कुछ ना सोचना बहुत अच्छा है, बहुत ही उत्कृष्ट बात है। यदि सोचना भी हो तो क्या सोचना चाहिए? ये मेरा दुश्मन नहीं है, यही सोचना चाहिए ना। दुश्मन बाहर नहीं होते, दुश्मन अंदर होता है। ये दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है कहने वाली आत्मा ही दुश्मन है आत्मा के लिए। कहा है कि इसे दुश्मन है ऐसा मत कहो, ये कह रहे हो तो आत्मा, अपनी आत्मा को अपने लिए ही आपने दुश्मन बना दिया, दुश्मन बन गया। हम ही अपने दुश्मन बन जाते हैं जब दूसरे को दुश्मन कहने लगते हैं। और इसलिए दूसरे को दुश्मन समझने वाला और दूसरे को दुश्मन है ऐसा विकल्प रखने वाला केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो राग द्वेष के संस्कार हैं। ये राग द्वेष के संस्कार आपको सामायिक करने नहीं देते, और सामायिक किए बिना केवल ज्ञान होता नहीं, भगवान बनता नहीं आत्मा। तो आत्मा को भगवान बनाने का उपाय क्या है? ये है कि आप बाहरी वस्तु में भी समता भाव रखो, समानता। मेरा कोई भी मित्र भी नहीं है और कोई भी शत्रु भी नहीं, ये तो पहला काम। अब मित्र आकर के खड़ा हो गया तो आप राग करोगे, तो ये राग भी नहीं करना। दुश्मन आकर के खड़ा हो गया तो आप द्वेष करोगे, ये आ गए देखो मन में, ये आ गए देखो वही है, वही है जो आया था, मेरा दुश्मन था, ये भी नहीं करना। उसको दूर रखो, मित्र को भी दूर रखो और दुश्मन को भी दूर रखो, दूर से जानो देखो, उससे कोई राग द्वेष मत करो, निकल जाओ। ये तो बाहर परिपक्व होना चाहिए, बाहरी प्रैक्टिकल कार्य इतना तो पहला ठोस चाहिए। जिसको बाहर में समता नहीं वो अंदर में सामायिक को क्या कर सकता है? हाँ, सामायिक में बैठते समय कुछ भी नहीं विचार करना, यही करना हमने बता दिया, वो बाद में आएगा। सामायिक में बैठते समय ये विचार करना, ये दुनिया के सारे जो चेतन अचेतन दो ही तो पदार्थ हैं, ये दुनिया के सारे चेतन अचेतन पदार्थ मेरे नहीं, और ये शरीर का टुकड़ा भी, ये ढांचा, ये भी मैं नहीं हूँ, मैं अकेला आत्मा हूँ। इतना निर्णय कर लो पहले, शरीर मेरा नहीं, दुनिया के चेतन अचेतन पदार्थ मेरे नहीं, ऐसा कह करके ये संकल्प ले लो कि ये मेरे नहीं है और मैं इनका विकल्प छोड़ देता हूँ। कब तक छोड़ देता हूँ? जब तक के सामायिक करूंगा तब तक इनका विकल्प छोड़ देता हूँ, निर्विकल्प हो करके मैं अपना सोचता हूँ। अपना सोचता हूँ क्या, सोचने की जरूरत नहीं रहती फिर बाद में, बाद में सोचने की जरूरत ही नहीं रहती। जब विकल्प छोड़ दिया तो आप कहाँ हैं, किधर हैं आप, अपने आप में हैं कि बाहर में हैं? फिर अपने आप को पाने की क्या जरूरत है? बाहर का विकल्प आपने छोड़ करके संकल्प लिया कि मैं जब तक सामायिक कर रहा हूँ ये दुनिया मेरी नहीं, शरीर मेरा नहीं, और भीतर उत्पन्न होने वाले जो चंचल भाव हैं वो भी मेरे नहीं, चंचल भाव भी मेरे नहीं, और फिर चंचल हो ना हो इससे कोई प्रयोजन नहीं मुझे, और जो स्मृति पटल पर चित्र आ रहे हैं उनको मैं केवल जानूंगा देखूंगा, जानूंगा देखूंगा, शरीर को हिलने नहीं दूंगा, बाहर का विकल्प उत्पन्न होने नहीं दूंगा, ऐसा कह करके आप तटस्थ बैठ जाइए। अगर बैठ गए, अगर आप बैठ गए तो सामायिक सिद्ध हो गया, अगर आप बैठ नहीं पाए सामायिक नहीं होगा। प्रैक्टिस तो कर सकते हैं भले ही आपको ना हो पाए, गृहस्थ तो कर ही नहीं सकता, असंभव है ऐसा कह करके छोड़ोगे, काम नहीं चलने वाला। भरत चक्रवर्ती भी करता रहा है, इतने बड़े परिग्रह के धारी चक्रवर्ती, वो भी सामायिक करता रहा। क्यों करता रहा होगा? कल के दिन मुनि बनूंगा तो मुनि बनते ही मुझे केवल ज्ञान होना चाहिए। निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा लूंगा तो लेते ही मुझे केवल ज्ञान होना चाहिए, ये रुचि थी उनकी। मैं जब तक हूँ वैरागी हूँ, विरक्त थे वो। जब सामायिक में बैठ जाते थे तो सब कुछ भूल जाते थे, ये मेरा है ही नहीं। वैराग्य हमेशा ही था उनको, पदार्थ के प्रति, संसार के प्रति। आपको कितने विकल्प हैं, आप कितने उलझे हैं बाह्य पदार्थों में, बाह्य परिग्रह में। वो बच्चा स्कूल नहीं जाता, अभ्यास नहीं करता, खाना नहीं खाता, बस इसी में जिंदगी जा रही है इसी में जिंदगी जा रही है। वो दुकान नहीं गया आज राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष होता रहता है। और ये राग द्वेष का जीवन, इसी को कहते हैं संसार। संसार इज इक्वल टू राग द्वेषमय जीवन। संसार इज इक्वल टू राग द्वेषमय जीवन। और भरत चक्रवर्ती इज इक्वल टू वैराग्य पूर्ण निर्विकल्प जीवन गृहस्थ अवस्था का। उसके 96,000 रानियां थी। किसके? भरत चक्रवर्ती के। उन रानियों को बसाने के लिए एक बड़ी सिटी निर्माण करनी पड़ेगी। और उनके बच्चे कितने होंगे फिर? एक एक रानी के एक एक बच्चा भी हो गया कितना बड़ा परिवार हो गया, अखंड परिवार। अखंड परिवार 2 लाख 3 लाख का परिवार, एक अखंड, एक ही घर। एक ही घर का मतलब रहते तो अलग अलग कमरे में होंगे लेकिन परिवार एक है ना। उनका खाना पीना सब कुछ एक जगह चलता था। भरत चक्रवर्ती को कोई भी विकल्प नहीं होता था ये सबको, परिग्रह को देखकर विरक्त थे वो भीतर से। ये परिग्रह मेरे न हैं, न थे, न हैं, न मेरे हो सकते हैं। ये तो जड़ वस्तु हैं, चेतन वस्तु हैं, पर हैं। मैं अकेला आत्मा, शरीर भी मेरा नहीं, मैं अकेला आत्मा अपने में हूं। सबसे निर्मोही होकर के बैठते थे वो सामायिक में। ऐसे निर्मोही होना सीखो सामायिक करना चाहते हो तो। पहला निर्मोही हो जाओ, परिवार से निर्मोह, धन से निर्मोह, दुकान से निर्मोह, घर से निर्मोह। ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं हैं। करे तो हो सकता है कि नहीं है? संभव है कि नहीं आत्मा का कल्याण? भरत चक्रवर्ती घर में आप भी बन सकते हो कि नहीं? चक्रवर्ती नहीं, चक्रवर्ती जैसा विरक्त निर्मोही बन सकते हो कि नहीं? असंभव है क्या? करे तो सब संभव है। और ऐसा यदि भरत चक्रवर्ती जैसा निर्विकल्प जीवन जीना सीखने लग जाए कोई व्यक्ति, तो उसके जीवन में ध्यान रखना, लिख के रखना, मैं सत्य बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, कि उसको शारीरिक बीमारी नहीं होगी, मानसिक टेंशन नहीं होगा, मानसिक को कोई भी रोग नहीं हो सकता और सदा शांत रहेगा, सुख की अनुभूति करेगा। 50% सुख की अनुभूति तो गृहस्थ अवस्था में ही आ जाती है। आत्मा की नहीं कह रहा हूं, निर्विकल्प होने से 50% सुख निर्विकल्पता का घर में आ जाती है। आत्मानुभूति नहीं है वो, निर्विकल्प होने की अनुभूति, बाहरी परिग्रह से मुक्त होने की अनुभूति। एक व्यक्ति है, रात दिन चिंता करता है, रात दिन हाय 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 हाय, बच्चे ऐसे, दुकान ऐसी, कुछ संसार ठीक से नहीं चलता, हाय हाय हाय। ये आप लोगों के घर में है क्या? नहीं नहीं है तो क्या सिद्ध परमिष्टि हैं आप लोग? हाय हाय की बातें बहुत हैं, कितना शांत हो गया देखो मशीन बंद होने से। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस हो तो प्रवचन में इतना आनंद आता है। साइलेंस चाहिए, क्या करें, आपका भाग्य ही उतना है यहीं पर मशीन धन नहीं है, हमारे प्रवचन में डूब गए हैं। ऐसे डूबना सीखो, ऐसी रुचि रखो। ठीक आने था, वो तो चलने वाला ही, उसको भी जानना देखना, बिगड़ना नहीं है, छोड़ना छोड़ना छोड़ इधर ही रहना, 9 बज जाए तो भी इधर ही। अरे महाराज ऐसा मत बोलो, मैं बहुत धीरे से पकड़ता हूँ आप लोगों को, धीरे से पकड़ लेता हूँ तो उधर ध्यान जाता है। आप यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आते हैं तो रुचि पूर्वक और समर्पण पूर्वक आइए, जीवन बनेगा। नित्य नई नई बातों को हम सुनते 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 जीवन बनाएंगे। प्रवचन एक भी दिन चूकना नहीं चाहिए, ये ज्ञानामृत आपकी जिंदगी को बनाने के लिए अमृत ही अमृत है। हाँ आदत, ये व्यसन व्यसन होना चाहिए, व्यसन प्रवचन सुनना व्यसन होना चाहिए। हाँ व्यसन, व्यसन किसको कहते हैं, जिसको खाए बिना चैन नहीं पड़ता उसको कहते हैं व्यसन। व्यसन की परिभाषा पूछना चाहो तो बाजार में जाओ उनसे पूछो व्यसन किसको कहते हैं, वो कहता है बैठो तुमको सिखाता हूँ एक दिन में नहीं आएगा वो अनुभव में, पहला एक चम्मच देगा दूसरे दिन एक चम्मच बढ़ाएगा, बढ़ाते 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 आपको ऐसी आदत डलाएगा। अब आप स्वयं जब ऐसा कहने लग जाएंगे तो ये इस गर्म चाय के बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा। गर्म चाय किसको कहते हैं मालूम है ना, इनडायरेक्ट में बोलता हूँ वो गर्म चाय अलग है, वो गर्म चाय पीते पीते जैसे वो व्यसनी हो जाते हैं, हम भी क्या व्यसनी नहीं बन सकते, उसके बनते ही हैं, व्यसनी के साथ रहकर व्यसनी बन जाते हैं। और साधु के साथ रहकर क्या हम धर्म के व्यसनी नहीं बन सकते, इसी को कहते हैं सत्संग, जो निरंतर मिलता है और हमारे जीवन को बिल्कुल निर्मल और परिशुद्ध बनाता है, निश्चिंत निर्विकल्प बनाता है, इसी का नाम सच्चा जीवन है। गृहस्थ ऐसा यदि धर्म सुनने का व्यसनी बन जाएगा तो ध्यान रखना चक्रवर्ती के समय समान वह एक आदर्श पुरुष बन जाएगा। चक्रवर्ती को कितनी चिंता होनी चाहिए, एक तो उनको 96,000 रानी किसकी क्या समस्या और एक एक सेकंड भी सबको समय देगा तो 96,000 सेकंड चाहिए, कहां से निकालेगा समय है? छानो हजार रानियों को एक सेकंड सबके लिए एक एक सेकंड भी टाइम देना चाहिए देखो ऐसा कहती है कैसे है देखो, वो भरत चक्रवर्ती की रानी जैसे उनकी रानियां भी वैसी थी, जब पति ऐसा था तो पत्नी कैसी होगी सोचो, तो जैसा पति वैसी पत्नी होती है, संस्कार तो आते हैं। हाँ कोई रानी भर चक्रवर्ती की रानी में से कोई भी ऐसी रानी नहीं थी जो उनके सामायिक को डिस्टर्ब कर सके। वो कहती थी सामायिक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो सामायिक क्या होता है उन्होंने एक सुनाया था, रोज शास्त्र प्रवचन करता था रानियों के लिए, सबको बिठा करके, बहुत बड़ा हाल चाहिए पड़ता, छानो हजार लोग बैठ करके। उस समय में माइक नहीं थे, बस नहीं था, चौथा खाल था, लेकिन लोग इतने बड़े थे कि जोर से बोल सकते थे। 1,00,000 लोग भी सामने बैठे हों तो उनकी आवाज पहुंचती थी। आज बोलने की शक्ति कम है, इसलिए हमने मशीन खड़ा कर दिया, आत्मा की ताकत कम पड़ गई। रानियों को ऐसा संस्कार डाला था पर चक्रवर्ती ने, ऐसा ही तुम लोग डालना घर में, तुमको बहुत सताती हैं ये, दुकान नहीं जाओगे तो क्यों नहीं जाते दुकान, ऐसी यही पूछती है, ऐसा पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए ना। इतना विकल्प संसार का आपको है तो उनको कितना होगा। फिर ये माना जाता है घर में महिला धर्मात्मा ज्यादा होती है, पति की अपेक्षा पत्नी में धार्मिकता अधिक होती है क्या कम होती है? और जिस घर में धार्मिकता पत्नी में अधिक है वो पति की रक्षा करती है। और सुनो, जिस घर में पत्नी में अधिक धार्मिकता होती है वो पत्नी पति को धार्मिक बनाती है, और जिस घर में पति में अधिक धार्मिकता होती है वह पति पत्नी को धार्मिक बनाता है। भरत चक्रवर्ती सबको धार्मिक बनाने वाला व्यक्ति था, बच्चों को धार्मिक बनाया, पत्नियों को धार्मिक बनाया, जिंदगी को ऐसा हल्का बनाया, ऐसा हल्का बनाया, संसार का संसार चल रहा है लेकिन हल्कापन महसूस हो रहा है, कहीं भी टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, ज्यादा विकल्प नहीं, सब काम करो घर के लेकिन ज्यादा विकल्प करके नहीं, सहज रूप से होने दो, जितना होता है उतना होने दो, टेंशन मत लो कि उतना ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, ऐसा इतना ही क्यों नहीं हुआ, टेंशन नहीं, जो करना है टेंशन के बिना करो, ये है धार्मिकता। ये कला भरत चक्रवर्ती से सीखो, ये कला भरत चक्रवर्ती के पत्नियों से सीखो, जैसा पति था वैसी पत्नी थी, पत्नियां थी और वैसे ही बच्चे थे, सबको उपदेश सुनाता था वो चक्रवर्ती, बैठो स्वाध्याय करेंगे, जिनेन्द्र भगवान के वचन, आदिनाथ भगवान के वचन सुनेंगे, उपदेश सुनेंगे, पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा, शास्त्र स्वाध्याय सुनना, व्यसनी बन जाना, सब लोग प्रवचन सुनने की व्यसनी थे चक्रवर्ती के घर में, बच्चे भी प्रवचन सुनने की व्यसनी थे। और बताया जाता है 923 बच्चे वो अपने पिछले जन्म में निगोद में थे, निगोद से आए, सबसे पहले तो वहां से मर करके वो पैसा का कीड़ा बने, निगोदी जीव बहुत सूक्ष्म होते, उनके हाथ पांव नहीं रहते, वनस्पति है ना, वनस्पति हरा हरा जो दिखता है वो निगोदी जीवों का शरीर है, बादर निगोदी उसमें पाए जाते हैं, वनस्पति के आश्रय से निगोदी जीव रहते हैं, जो हम आंखों को देखने के लायक जो निगोदी जीव होते हैं वो वनस्पति में रहते हैं, कोमल वनस्पति में, जो एकदम हरा हरा दिखता है भाग, कोमल वनस्पति जैसे फूल है, अंकुर है, उगता हुआ अंकुर, प्रौढ़ नहीं होता वो, कोमल अवस्था, उसमें अनंतानंत निगोदी जीव रहते हैं, वो बादर निगोदी उस अवस्था में थे, वो 923 जीव वहां से एक साथ मरे, मर करके पैसा का कीड़ा, वो बहुत पांव वाला होता है ना, वो बने। बनने के बाद भरत चक्रवर्ती एक बार जा रहे थे समोचरण के लिए, हाथी पर बैठकर, हाथी पर सवार होकर के जा रहा था, और रास्ते में वो कीड़े झुंड के झुंड जा रहे थे, एक के ऊपर एक, एक एक ऊपर बैठ करके। देखा होगा जंगल में जाते रहते हैं, बहुत इतने सारे रहते हैं। चक्रवर्ती के हाथी ने नीचे नहीं देखा और उसके ऊपर पांव रख दिया। 923 थे वो कीड़े, पैसे के कीड़े, सब मर गए और भर चक्रवर्ती के यहां जन्म लिए मनुष्य बनकर, उनके बच्चे बने वो। 923 बच्चों को मनुष्य पर्याय मिला, पिछले पर्याय में पैसे के कीड़े, उसके पिछले पर्याय में निगोदी जीव थे, आकर के मनुष्य बने। इनको 8 साल की उम्र में संसार से वैराग्य हो गया। 923 एक साथ, सबको एक साथ मरे, एक साथ वैराग्य भी एक साथ हो गया। मरे थे पिछले भाव में एक साथ, ऐसे ही यहां पर वैराग्य भी 923 को एक साथ वैराग्य हो गया। और वैराग्य होने के बाद उनको संसार अच्छा लगने नहीं लगा, और फिर क्योंकि बचपन से भरत चक्रवर्ती ने और संस्कार डाल दिया था, धार्मिक धार्मिक संस्कार दे दे करके उनको आत्मा का परिचय कराया था, कैसे होते हैं मुनि महाराज, कैसे होते हैं पंच परमेष्ठी, कैसे होते हैं कि संसार क्या है, सार है कि आसार है, सब कुछ उपदेश दे करके। संस्कार तो डाला ही था, आप लोग क्या देते हैं संस्कार, कुछ भी नहीं देते। जब बच्चा जन्मता है गर्भ से ही संस्कार होता है, गर्भ में आने के बाद माँ स्वाध्याय करती है, प्रवचन सुनती है, धार्मिक संस्कार डालती रहती है। जो माँ सोचती है बच्चे पर प्रभाव पड़ता है उसका, गर्भ से ही धार्मिक संस्कार आते हैं। और धार्मिक संस्कार डालने का विधि विधान यही है, आदि पुराण आप लोग पढ़िए, उसमें गर्भ से लेकर मरण तक के संस्कार किस प्रकार से होना चाहिए सब कुछ लिखा हुआ है। भरत चक्रवर्ती के यहाँ वो जो 923 बच्चे पैदा हो गए, धार्मिक बन करके, गर्भ से ही धार्मिक हो करके पैदा हो गए। जन्म के पश्चात भी चक्रवर्ती ने उनको बचपन से ही लाड़ प्यार करते हुए धर्म सिखाया, और उनको एक दिन अकस्मात जाति स्मरण हुआ। जाति स्मरण का मतलब पूर्वों का ख्याल आया उनको, हम पूर्व जन्म में क्या थे ये स्मरण में आया। स्मरण में आते ही विचार करने लगे, हम ऐसी पर्यायी थे, पैसे के कीड़े और हम हाथी के पैरों के नीचे, हमारे पिताजी का ये हाथी, इसी ने हम लोगों के ऊपर पैर रख करके रौंद लिया था, उससे हम मर गए, यही हाथी है वो, और हम सभी वहां से मर करके 923 यहां आए, उससे पहले निबोद में थे। ये जब पिछला भाव उनको पता चला कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण जहां करते थे, और तिरेंच पर्याय में थे, तिरेंच गति में थे, निगोद भी तिरेंच गति, और पैसे का कीड़ा बनना भी तिरेंच गति, तिरेंच गति में थे, और इतने भाग्य से हम मनुष्य पर्याय में आए, तीर्थंकरों के वंशज बनकर, चक्रवर्ती के वंशज बनकर के यहाँ हम पैदा हुए हैं, उच्च कुल में, क्षत्रिय कुल में पैदा हो गए, धन्य है हमारा जीवन। और ये जो जाति स्मरण हुआ था इसी को निमित्त बना करके उनको वैराग्य हो गया। उन सभी 300 बच्चों ने ये संकल्प ले लिया कि हम किसी संसारी जीव के साथ बात नहीं करेंगे, न मात के साथ, न पिता के साथ, न बहन के साथ, संसारी जीव जो परिग्रहधारी है उनसे बात नहीं करेंगे। तो किससे बात करेंगे, अगर मुनि महाराज मिले तो गुपचुप थोड़ा सा उनसे बात करना, बाकी मौन। इतना वैराग्य हो गया। भरत चक्रवर्ती कई दिन तक सोचने लगा, हमारे बच्चों को हुआ क्या, अभी तो 8 साल 9 साल के हैं सभी, और इनको क्या हो गया, अकस्मात ये मौन क्यों हो गए। तो मौन का कारण था वैराग्य। फिर चक्रवर्ती उन सब को लेकर के आदिनाथ भगवान के पास पहुंचा। आदिनाथ भगवान से पूछा कि हमारे लड़कों को क्या हो गया है, कौन सी गले की बीमारी हो गई जो बोल नहीं पा रहे हैं। आदिनाथ से ये पूछा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। आदिनाथ भगवान कहते हैं इनको कोई गले की बीमारी नहीं, ये बिल्कुल स्वस्थ और आरोग्य हैं, चिंता नहीं करो, तुम्हारे सारे बाल बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली, भाग्यशाली लोगों का गला बोलता नहीं क्या? ये तो बहुत मधुर और मीठे बोलेंगे और बोलते हैं, बोलने की शक्ति है, लेकिन इनको कोई बीमारी नहीं हुई है, इनको तो पूर्व भव का जाति स्मरण हुआ है। वो इतिहास सुना दिया फिर आदिनाथ भगवान ने, तुम्हारे पांव के नीचे दबकर 8-8.5 साल पहले वो कीड़े मर करके ये 930 तुम्हारे जो आज पुत्र हैं, ये आज तुम्हारे यहां जन्मे हैं, उससे पहले निगोद में थे, और ये अपने जाति स्मरण से पूर्व भव में हम तिरंच गति में थे, यह कह करके इनको वैराग्य हुआ है। अब ये लौट करके घर में घर जाएंगे नहीं, इनको इतना तीव्र वैराग्य है, जैसे बैठे वैसे ही बैठे रहेंगे, समय आ रहा है। उपदेश सुनते सुनते जब भगवान का भी वो उपदेश वैसा मिल गया और पूर्व भव का कथा सुनाया अपना, हम ये थे, तो उनको और वैराग्य दृढ़ हो गया, हम तिरंच गति से मुक्त होना चाहते हैं, हम मनुष्य गति से मुक्त होना चाहते हैं, हम किसी गति में रहना ही नहीं चाहते और शुद्ध अवस्था को प्राप्त होना चाहते हैं, ये दृढ़ संकल्प करके बस चक्रवर्ती प्रवचन सुन रहा है और वो केश लॉन्च प्रारंभ 923 बच्चे। ऐसा संस्कार डाला था चक्रवर्ती ने और उस संस्कार के कारण से परिणामों में निर्मलता आई, सभी भाग्यशाली थे वो 923। पूर्व भव का पुण्य कुछ भी नहीं था, इस जन्म में किया हुआ पुण्य ही साथ आया, इस जन्म में किया हुआ पाप भी साथ आ सकता है, इस जन्म में किया हुआ पुण्य भी साथ आ सकता है, सब साथ आया। वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली, चक्रवर्ती रोने लगा, मैं अभी तक घर में रहा, वैराग्य नहीं हुआ, मेरे से पहले छोटे छोटे मेरे लाड़ प्यारे बच्चों को वैराग्य हो गया, मेरे को क्यों नहीं हो रहा है? बच्चों की दीक्षा देकर देख करके चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया, लेकिन एक साथ छोड़ नहीं सकता था, छोड़ नहीं सकता था, संसार करना पड़ा, कुछ समय तक संसार किया, तो ऐसा संसार किया, जब उन्होंने ऐसा संसार किया उसका वर्णन आता है, चक्रवर्ती कितने निर्लेप निर्लेप निर्मोही थे, उसके बाद तो और भी वो निर्मोही हो गए, संसार करते रहे लेकिन संसार में रहकर संसार नहीं करते थे, वो धर्म ही करते थे। कुछ समय के पश्चात जब उन्होंने भी दिगंबर दीक्षा ली तो ये भी वर्णन आया है उस चक्रवर्ती के संबंध में, जब उन्होंने दीक्षा ली, केशलोंच किया और प्रथम सामायिक में आत्मा में ध्यान में लीन हो गए, दीक्षा लेने के 47 मिनट के अंदर अंदर उनको केवल ज्ञान हो गया, अरहंत हो गए। जिंदगी भर कमाया हुआ धर्म मुनि अवस्था में तुरंत उसने फल दे दिया। ध्यान कैसे करना, ध्यान कैसे करना, ध्यान कैसे करना, यही विकल्प उनको भी होता था, पर करने की कला सीखी और जो सीखा वो काम में आया मुनि बनने के बाद। वो एकाग्रता घर में ही उन्होंने कंट्रोल कर लिया था और यहां आते ही लीन होते ही केवल ज्ञान हो गया। और बाहुबली को देखो, सामायिक नहीं करते थे, उनका कोई ऐसा वर्णन नहीं आता कि बाहुबली सामायिक करते थे, वो तो कुश्ती खेलते होंगे, कभी भरत को उठा के पटकना है ना, जिसके पास शक्ति होती है उसका उपयोग तो करता होगा ना बचपन में। बाहुबली को इतने संस्कार नहीं थे ध्यान के और सामायिक के, चक्रवर्ती को जितने संस्कार थे, बैठते ही केवल ज्ञान हो गया और बाहुबली को एक साल खड़े रहना पड़ा। यही डिफरेंस होता है। घर में रहकर वैरागी बने रहो तो भी जीवन सफल बन सकता है। अगर मुनि नहीं बन सकते हो, बनना तो बहुत अच्छी बात है, यदि वहां तक नहीं बन सकते हो, आरिका नहीं बन सकते आप लोग, तो कोई बात नहीं। पर आरिका जैसी विरक्तता घर में रहती है तो क्या नुकसान है? वो सबसे ज्यादा फायदा तो उसी में है। शारीरिक कोई भी बीमारी हमारी नहीं हो सकती, गंभीर बीमारी कोई नहीं हो सकती, और बीमारी नहीं होगी तो लाखों रुपए बच जाएंगे। बीमारी होने पर तो खर्चा कितने करते, बिल में ही 50,000 लेता है डॉक्टर, फिर रोग ठीक करने के लिए तो 4-5 लाख लगेगा तब बच पाओगे। और धर्म करोगे, विरक्त रहोगे, मानसिकता को ध्यान के माध्यम से कम करते रहोगे, स्वाध्याय करोगे, ज्ञान बढ़ाओगे, इसका व्यसनी बनोगे, तुम्हारे घर में खर्चा कम रहेगा। बीमारी के लिए तो किसी को खर्चा करना ही नहीं पड़ेगा। हमने नहीं सुना शास्त्र में, कहीं नहीं पढ़ा कि भरत चक्रवर्ती के इतना बड़ा परिवार था, लाखों लोग थे, तो अस्पताल कितने थे ये कहीं पढ़ने में नहीं आया। अस्पताल की जरूरत क्या है? ध्यान एक ऐसा मेडिटेशन है, औषधि है, कि मेंटलिटी आपकी ठीक यदि रहती है ध्यान के माध्यम से तो शारीरिक कोई बीमारी आपको नहीं हो सकती। और एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, खान पान शुद्ध खाना चाहिए। शुद्ध खाना और धार्मिक अध्ययन करना, ये दो अगर आप घर में रह करके व्यसनी हो जाओगे इसके, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं आपको कोई संसार में दुख देने वाला वस्तु सामने रहेगा ही नहीं, सब में समता भाव आएगी। टाइम बहुत हो गया। चिनवानी, प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांध रहे।
जिनवानी माता की, एक मिनट से बैठ जाइए, एक मिनट जाना नहीं, इतना भागना नहीं, जल्दी उस नहीं करना, जल्दी छोड़ा महाराज जी ने। चलो, पुरुषों ने अपने धोती दुपट्टा किस तरह का बुलाया, परों में पैंट शर्ट पूजन नहीं चलेगा, एक एक तो रोज बताना पड़ेगा। धोती दुपट्टा एक कोई भी नमूना एक ला के दिखाइए और उसके बाद में सभी लोगों को एक जैसा ला सकते हैं, जिनके घर में अच्छे पुराने कपड़े नहीं चलेंगे, एकदम पुराने फटे छिंदी टाइप के नया कपड़ा, नया अच्छे है तो चलेगा, लेकिन
जिंदगी में पहली बार पूजन के लिए बैठ रहे हैं अपन, तो पुराने कपड़ों से नहीं आना है, जिंदगी का पहला द्वार प्रवेश करना है, धर्म का प्रथम द्वार। पहली बार कर रहे हैं ना 10 लक्षण, और इतने आनंद से मनाओगे, इतना समर्पण और उत्साह जगा है, तो उसके लिए वस्त्र कैसा होना चाहिए ये कुछ चर्चा ध्यान में रखना है, वही बता रहे।
महिलाओं को भी यही बताया, सभी को ऐसा पुराना वराना कपड़ा लेके बैठने से वो नहीं लगता, तो आप लोगों को भी कपड़े का ध्यान रखना। और पूरा कार्यक्रम पुरुषों का अभी जमा नहीं, जमा लीजिए उसको, आ गया समीप में कैसे क्या करना। ठीक, मैंने कहा था कि हर घर पे एक ध्वजा लगाइए, अभी नाम नहीं दिया, ध्वजा कितना बड़ा आदि होना कि आने, जिन जिनको चाहिए एक नाम लिस्ट ले लीजिए, महिलाओं का महिलाओं में ले लीजिए, पुरुषों का पुरुषों में, चाहे दोपहर में चाहे अभी, नाम लिख करके लिस्ट बनाइए, अर्घ दे दो।
चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनकी जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव, जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझा की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंट में। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासन, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम ब्रीम परम पूज मुनि से नियम सागर मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति।
Thank you.